समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार फरहत, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल फरहत, लाइक यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड आवर प्रोग्राम टू आवर लिसनर्स, दिस इज आज सवेरे आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम एंड टुडे इज संडे, सो जस्ट वॉन्ट टू विश यू एंड एवरीवन एल्स अ वेरी हैप्पी संडे। इट्स माई फेवरेट डे, आई एंजॉय अ क्वाइट डे, मीट और कॉल ओल्ड फ्रेंड्स, सिट विद अ फैमिली पीसफुली एंड live every bit of my Sunday. Farhat, let me ask you, how do you celebrate your Sunday?
जी बिल्कुल तन्वी, रविवार का दिन जो है वो बेहद खास होता है और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आज ही के दिन शेड्यूल होते हैं क्योंकि हफ्ते भर काम करने के बाद एक दिन मिलता है आराम करने का और बहुत सारी चीजें ऐसी करने की जिसमें आप अपना जो दिमाग है वो दोबारा से तरोताजा कर सकते हैं।
True. So, without further ado, let's begin our program with the news headlines. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Karnataka today. During the visit, Mr. Modi will flag off 3 Vande Bharat Express trains at KSR Railway Station in Bengaluru. It includes trains from Bengaluru to Belgavi, Amritsar to Sri Mata Vaishno Devi Katra and Nagpur Ajni to Pune. Thereafter, he will flag off Yellow Line of Bangalore Metro and undertake a metro ride from RV Road Ragiguda to Electronic City Metro Station. The Prime Minister will also inaugurate and lay the foundation stone of urban connectivity projects in Bengaluru and address a public function. Mr. Modi will lay the foundation stone of Bangalore Metro Phase 3 project worth over 15,610 crore rupees. The total route length of the project will be more than 44 kilometers with 31 elevated stations. More on this from our correspondent.
The Vande Bharat service to be dedicated by Prime Minister today will provide comfortable travel option to those travelling to Belagavi in North Karnataka. Vande Bharat service to Belagavi was very eagerly awaited by the railway passengers as it will reduce travel time between the two cities. Another important project is related to Metro Yellow Line that connects Electronic City where top ITBT companies have their headquarters. This line will also ease traffic on Hosur Road that takes us to Tamil Nadu. The third phase of Namma Metro Network, once operationalized, will improve mobility by taking total metro network in the city to 220 kilometers. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
निर्वाचन आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये दल 2019 से 6 वर्षों तक एक भी चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे हैं। इन दलों के कार्यालयों का भी कोई अता पता नहीं है।
The Sikkim government has taken elaborate steps to celebrate Har Ghar Tiranga initiative with full enthusiasm. Senior officials in the Culture Department, who is the nodal agency to implement the program in Sikkim, informed that 1 lakh national flags to be distributed among citizens. The Culture Department will hand over the tricolour to district administrations so that they can distribute amongst citizens. On 12th of August, Tiranga rally to be held from MG Marg at Gangtok in presence of the Governor and Chief Minister. There will be an exhibition at MG Marg on that, highlighting multiple themes. Later, a cultural concert to be organized at Manan Kendra with full of patriotic enthusiasm. Apart from Gangtok city, Tiranga rallies and cultural programs are also being held at other districts too.
भारत ने अमेरिका और रूस के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये बैठक रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने और शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है और इसीलिए भारत दोनों देशों के बीच होने वाली बैठक और शांति प्रयासों का समर्थन करता है।
Bangladesh's Chief Election Commissioner, AMM, Nasiruddin, has said that the upcoming 13th Jatiyo Sanshad National Parliament elections will be held in the first half of February next year. He said the schedule may be announced in early December, 2 months before the elections. Talking to reporters, he said the commission is actively coordinating with divisional and local election officials to ensure smooth holding of the polls.
मौसम विभाग ने अगले सप्ताह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है. विभाग ने अगले 6 से 7 दिन में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, बिहार, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश की संभावना है.
Now, news from the world of sports. The Indian women's team stormed into semi-finals with superb performances converted into victories in Asia Rugby Under-20 Championship Sevens being played at Rajgir in Bihar. After defeating Kazakhstan in their first match, the Indian girls thrashed UAE team in the second clash. The result ensured a semi-final berth before the team's final pool match of the day against Hong Kong, China. On the host side, the men's team led by Sumit Kumar Rai failed to impress with their performances despite having good supports of fans at home ground in Rajgir. The boys team will now face Kazakhstan in the race to finish 5th.
और वहीं तन्वी दुनिया की 5वें नंबर के शतरंज खिलाड़ी भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने कल क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट के तीसरे दौर में अमरीकी ग्रैंड मास्टर रे रॉबसन को हराकर दूसरे स्थान पर जगह बनाई. वहीं जर्मनी के विंसेंट कीमर टूर्नामेंट में पहले स्थान पर बने हुए हैं. मास्टर्स श्रेणी में राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में अभी 6 राउंड बाकी हैं. अर्जुन एरिगेसी के अभी 2.5 अंक है, जबकि कीमर क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट में कार्तिकेयन मुरली के खिलाफ एक और जीत हासिल करने के बाद 3 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. इस प्रतियोगिता में सबसे युवा वी प्रणव ने शीर्ष वरीयता प्राप्त अनीश गिरी के साथ ड्रॉ खेलकर अपने खेल से सबको प्रभावित किया. और अब श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुख कर लेते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरों का. तो तन्वी, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
Absolutely. The Entrepreneurship Development and Innovation Institute Chennai is organizing a 4-day training program on gold appraiser training from 18th to 22nd of August at Chennai. The training will be to explain the difference between carat, starting with a K, and carat, starting with a C. These are methods for calculating gold purity, jewel loan assessment procedures, practical skills development, and quality assurance training. And we have some more news from Chennai itself. In the Quant Box Chennai Grandmasters, Germany's Vincent Kamer continued his flawless form, posting his 3rd straight victory by overcoming Karthikeyan Murali in round 3. With this win, Kamer remains the only player in the Masters section with a perfect score, emerging as the early leader in India's most prestigious classical chess tournament. The day also saw a strong performance from Arjun Erigasi, who defeated American Grandmaster Ray Robson to stay firmly in the hunt for the top spot. Moving towards Hyderabad, heavy rains lashed several parts of Hyderabad last evening in late hours, with several areas including Vanasthipuram and Hyath Nagar areas receiving very heavy rainfall over 100 mm during 2 hours. Many areas in the old city, including Nampally, received the highest of 124.8 millimeter rainfall till early this morning. Kheratabad received over 120 millimeter and Charminar received 112.5 millimeter of rainfall. This is the 3rd time during this month that rains in Hyderabad have crossed over 100 mm. Several areas marooned and low-lying areas stormed with rainwater. Meanwhile, Met officials have warned of heavy rains for the next few days in several parts of Telangana. And now if we talk about Bangalore, the Bangalore Traffic Police have made arrangements for the traffic management during the visit of Prime Minister Narendra Modi today. The Traffic Police have imposed traffic restrictions in the city. During the visit of Prime Minister, the Silk Board to Hosur Elevated Expressway and roads connecting to Electronic City will be closed. Those moving towards Hosur are advised to take the Jikini Road from Bosamandra Circle. The vehicles using Jaydev Hospital Junction are advised to take left near Banshankari bus stand and move towards Saraki Market. There will be restrictions at East End Circle and the vehicles will only be allowed on 29th Main Road and 9th Cross Junction to reach Dalmia Junction. So these were the updates from Kolkata, Chennai and Bangalore. Now Farhat, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी तन्वी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली में बारिश से जुड़ी खबर से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी जिले के जैतपुर के पास एक दीवार ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में प्रवासी श्रमिक शामिल हैं। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान मौके पर पहुंचे और मलबे से लोगों को निकाला गया। सभी घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे दिल्ली मेले के कल चौथे दिन बारिश के बावजूद भी लोगों की भीड़ देखी गई। मेले में विविध विषयों पर भारतीय पुस्तकों का एक विशाल संग्रह प्रस्तुत हुआ। ये मेला व्यावसायिक लेन देन, नए संपर्क स्थापित करने, सह प्रकाशन व्यवस्था, अनुवाद और कॉपीराइट व्यवस्था और पुरानी दुर्लभ पुस्तकों के पुनर्मुद्रण के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। इस दौरान कई सम्मेलन, पुस्तक विमोचन और लेखकों से भेंट करने के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। और अब आगे बढ़ते हैं, मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के तहत राज्य में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 25 लाख लखपति दीदी बनाई गई थी और इस साल भी उनका इरादा 25 लाख और बनाने का है। नवम्बर 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति की सत्ता बरकरार रखने में महिलाओं के समर्थन का श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाइयों को अपनी बहनों को सशक्त बनाने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि वे अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद फंसे महाराष्ट्र के 172 पर्यटकों में से 171 पर्यटकों के उत्तराखंड में सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। एक लापता पर्यटक श्रीमती कृतिका जैन की तलाश अभी जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मातली, जौलीग्रांट और उत्तरकाशी जैसे स्थानों पर 160 पर्यटक सुरक्षित हैं। उनमें से कई ने अपने मूल यात्रा कार्यक्रम के अनुसार अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी है। हर्षिल में फंसे 11 पर्यटक अभी सुरक्षित हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, कोलकाता को रुख कर लेते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीजीटी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग करते हुए शनिवार को राज्य सचिवालय नबन्ना मार्च के संबंध में कथित अत्याचारों के आलोक में भाजपा विधायक अशोक डिंडा के खिलाफ एक एफआईआर सहित 6 एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। एक बड़ी घटना में पीड़िता की मां पर पुलिस द्वारा कथित तौर पर लाठीचार्ज और मारपीट की गई, जिसे अधिकारियों ने नकार दिया। और अब महानगरों के बाद रुक कर लेते हैं महानगरों के मौसम का हाल का। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की। और जैसा कि तन्वी, हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों से जो है वो रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कहीं लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मौसम भी काफी सुहावना हुआ और आज भी वैसे ही स्थिति रहेगी। बारिश होने की संभावना है। राजधानी में न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
And if we talk about Chennai, Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 25 degrees and maximum will be around 33 degrees. Bangalore is expected to have a generally cloudy sky but with moderate rain. The minimum temperature was 21 degrees and maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover somewhere between a minimum of of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius. So if we talk about all the cities, everywhere there is expected rain.
जी बिल्कुल तन्वी, लेकिन मुंबई और कोलकाता की बात कर लेते हैं. मुंबई में गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है. न्यूनतम तापमान 31 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा. कोलकाता में भी बारिश का दौर रहेगा. न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं. तो सबसे पहले तन्वी, क्या है इतिहास में खास?
If we talk about this particular year, the year 1675, the foundation stone for the Royal Observatory, Greenwich, was laid. The observatory is famous around the world. And in the year 1741, victory of King Marthand Varma, marking the end of Dutch colonial rule in India.
और अगर बात की जाए सन 1809 की, तो इक्वाडोर को स्पेन से आजादी मिली थी. वहीं सन 1920 में प्रथम विश्व युद्ध में 10 अगस्त 1920 को पराजित होने के बाद उस्मानी शासन ने सिवरी समझौते पर हस्ताक्षर किए.
In the year 1944, during World War II, American forces overcame remaining Japanese resistance on Guam.
वहीं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में 10 अगस्त 1945 को जापान की पराजय के बाद कोरिया का उत्तरी भाग रूस की लाल सेना के अधिकार में चला गया और कुछ दिनों बाद कोरिया का दक्षिणी भाग अमेरिका के आधार में चला गया.
In the year 1962, Marvel Comics superhero Spider-Man made his debut in the issue 15 of Amazing Fantasy. In 1979, the satellite launch vehicle SLV-3 was successfully launched. It was developed to demonstrate the capability of placing satellites into orbit and laid the foundation for India's subsequent advancements in space technology. In 2003, the first human who got married in space is Yuri Malenchenko. In August 2003, he married Ekaterina Dmitrieva, and she was in Texas, and Yuri was 240 miles over New Zealand on the International Space Station.
और वहीं सन 2004 में संयुक्त राष्ट्र और सूडान के बीच दारफूर कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए. और सन 2010 में भारत ने उपग्रह स्थिति तंत्र आधारित विमानन प्रचालन तंत्र गगन का सफल परीक्षण किया.
And today is 10th of August. This is a very special day because there are some days that we celebrate on this particular day, and World Lion Day is being observed annually every year on this particular day to celebrate the life of the king of the jungle. It is celebrated to raise awareness about the conservation and protection of lions, and it's a day to acknowledge the ecological importance of lions as a keystone species and to address the threats they face, such as habitat loss, human wildlife conflict, and even poaching.
जी तन्वी, और विश्व शेर दिवस की स्थापना भी शेरों की घटती संख्या और उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करती है. जहां शेर अपनी ताकत और भव्यता से हमें मोहित करते हैं, वहीं आवास की हानि, मानव वन्य जीव संघर्ष हो या फिर अवैध शिकार जैसे विभिन्न खतरों के कारण उनकी आबादी भी दिनों दिन घटती जा रही है. तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है शेरों का संरक्षण. शेर जो है वो सर्वोच्च शिकारी भी है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करके वे जंगलों और घास के मैदानों के स्वास्थ्य और पुनर्जनन को सुनिश्चित करते हैं, और ये संतुलन जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. और भारत में शेरों का संरक्षण सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है. शेर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न अंग है, जो शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है.
Absolutely. And there are certain facts about lions that are not so common, such as the lions. They live in large groups and they are called prides. A lion's roar can be heard from up to 5 miles away. And lions prefer to hunt at night, making it easier to catch the prey. And lions spend about 20 hours a day resting or sleeping. That's a lot.
Tanvi, aapne bahut sare tathye hain jo sher ke bare mein bata diya, aur mujhe lagta hai aaj ka jo karyakram hai wo jo sun रहे होंगे हमारे श्रोता, तो वो ये जान पाएंगे कि आखिर जो शेर से जुड़े जो तथ्य हैं वो आखिर क्या हैं.
Absolutely. And we also have a news regarding this particular day. Gujarat is marking a major milestone in the conservation of the majestic Asiatic lion. The Bardha Wildlife Sanctuary near Porbandar has emerged as a beacon of ecological restoration and community-driven progress. As Gujarat's lion census of 2025 records a historic 891 lions statewide, Bardha leads the way in expanding habitats beyond Gir. More on this from our correspondent.
Once a secondary habitat, Bardha Wildlife Sanctuary now flourishes with 17 lions and 25 leopards, reflecting years of ecological restoration and scientific management. The Forest Department's use of radio collars and real-time tracking technology has made lion conservation more effective than ever before. Community participation, especially by local Maldhari pastoralites, has made conservation truly inclusive and citizen-centric. With 891 lions now in Gujarat and over half outside Gir, Project Lion's habitat expansion has set new benchmarks for sustainable wildlife management. Today, the sanctuary is an example of India's vision of balanced development, Vikas Bhi, Virasat Bhi, blending progress with the preservation of precious natural heritage. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
Today is special day because we are also celebrating World Biofuel Day. Every year on this particular day, World Biofuel Day is observed to underline the significance of biofuels as a sustainable source of energy. The day also commemorates the successful operation of an engine on peanut oil by German engineer Sir Rudolf Diesel. Biofuels are fuels produced from organic matter or biomass like plants and algae. They're considered a renewable energy source because they can be replenished, unlike fossil fuels, and biofuels can be used in place of or alongside traditional fossil fuels for transportation, heating, and even electricity generation. And now we are moving towards our last category. We will get to know that who are those special people who took birth on this particular day and who left for their heavenly abode. Let me begin with Nirmal Pandey. And today is his birth anniversary. He is an Indian Bollywood actor who was known for his roles. And he played multiple villainous roles. But his performance were so unique. Let me just name out a few movies that he did. He did Shekhar Kapoor's Bandit Queen, and then he was also there in the television series Hatim. He gave a stellar performance in Daira 1996, for which he won a Best Actor Valentin Award in France. He was also there in Train to Pakistan, Godmother, and he was also there in the film Ozar. So let's hear a dialogue from his film Ozar, where he played the villain named Baba, and his style was one of a kind, and maybe you will remember his face better with his voice.
तेरे बस का नहीं है. धमकाता है, हाँ? बाबा को धमकाता है क्यों? हिम्मत है तो चलो वाले. धोखा देती है, हाँ? तू भी कमाल की. आदमी को हमेशा लड़ना चाहिए, लेकिन जिसका टाइम अच्छा हो उससे लड़ना नहीं चाहिए.
और अब हम याद कर रहे हैं भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान व्यक्ति पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को. शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है. पूरी तरह से निस्वार्थ और समर्पित संगीत साधक भातखंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित, वर्गीकृत और मानकीकृत करने का पहला आधुनिक प्रयास किया था. उन्होंने देश भर में घूम घूमकर उस्तादों से बंदिशें इकट्ठा करी, विभिन्न रागों पर उनसे चर्चा करके उनके मानक रूप निर्धारित करने और संगीत शास्त्र के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए अनेक विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें लिखने का भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया.
And if we talk about another personality, Eddie Fisher is the name. Today is his birth anniversary. An American singer and actor, popular during the 1950s, he sold millions of records and hosted his own TV show, The Eddie Fisher Show. He has given such beautiful tracks, and I'm sure you must have heard some of them, be it You Can't Be True Dear, Thinking of You, Bring Back the Thrill, Unless, I'll Hold You in My Heart, Tell Me Why, Trust in Me, and many more. And let's hear a famous track by him titled Anytime.
Anytime you're feeling lonely, anytime. time you're feeling blue, anytime you feel downhearted, that will prove your love for me.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता प्रेम अदीप का. प्रेम अदीप को राम के रूप में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है. सीधा बनी शोभना समर्थ के साथ पर्दे पर राम की भूमिका में वे नजर आए. दिल छू लेने वाली अभिनय ने इन्हें न सिर्फ फिल्म जगत में एक विशेष स्थान दिलाया बल्कि सदा के लिए अमर कर दिया. प्रेम अदीप ने 1941 में प्रदर्शित हुई फिल्म दर्शन के साथ ही एंट्री प्रकाश पिक्चर्स से की. तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म से ये प्यारा सा गीत.
अमर भावना अमर रही तेरी, अमर भावना अमर रही.
इसके अलावा घूंघट वाली, सागर मूवी टोन की भोले भाले और साधना, हिंदुस्तान सिनेटोन की सौभाग्य जैसी फिल्मों के साथ प्रेम अदीप के करियर का ग्राफ लगातार ऊपर उठता चला गया.
Today is the birthday of B. Sai Praneet, an Indian former badminton player. He became the first Indian male shuttler in 36 years to win a bronze medal in the BWF World Championships in 2019, only after Prakash Padukone in 1983. Sai Praneet was honored with the Arjun Award in 2019, and there's blood in his family, who plays badminton, and his maternal aunt was also a national level badminton player.
और तन्वी, अब हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी और अध्यापक श्यामलाल गुप्त पार्षद को. श्यामलाल गुप्त पार्षद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्प्रेरक झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता थे. कानपुर का नवल कस्बा झंडा गीत के रचनाकार श्यामलाल पार्षद की ऐतिहासिक स्मृतियों को आज भी याद करता है. और जैसा कि 15 अगस्त बहुत ही करीब है तो क्यों ना ये गीत भी सुन लिया जाए.
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा.
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा.
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा.
It's also the birthday of Ramesh Babu Pragnananda, an Indian chess grandmaster. A chess prodigy, Pragnananda placed second in the 2023 Chess World Cup and is the only Indian to have won the Tata Steel Chess Tournament after Vishwanathan Anand. He was also part of the Indian team that won the silver medal at the 2022 Asian Games in the men's team competition and the gold medal in the open section of the 45th Chess Olympiad in 2024. At 12 years and 10 months, Pragnananda became one of the youngest ever grandmasters, the title awarded to exceptional players by the World's Chess Federation. And in 2023, he was praised by nobody else but the Indian Prime Minister Narendra Modi for beating the second and third ranked players to make it to the World Cup final.
और अब हम याद कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई को. ये हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा. उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी पैदा करती हैं बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना काफी असंभव है. लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई ने बहुत ही निकटता से पकड़ा. सामाजिक पाखंड हो या फिर सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण, उन्होंने सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया और उनकी भाषा शैली में एक खास प्रकार का अपनापन भी नजर आता है.
And today is the birthday of Justin Theroux, an American actor and filmmaker. He appeared in films such as American Psycho, High School Reunion, Charlie's Angels Full Throttle, Miami Vice, The Girl on the Train, Bumblebee, Lady and the Tramp, and Beetlejuice, Beetlejuice. He was also a screenwriter for films like Tropic Thunder, Iron Man 2, Rock of Ages, and many more.
और आज के दिन हमें अलविदा कहा हिंदी और संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार, निबंधकार और समालोचक आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, निबंधों का संग्रह प्रकाशित किया और इसके साथ ही संस्कृत वाण्मय का भी इतिहास लिखा। वे संस्कृत साहित्य की हिंदी में चर्चा के लिए जाने जाते हैं। उनके पूर्व संस्कृत साहित्य से संबंधित अधिकांश पुस्तकें संस्कृत में है या फिर अंग्रेजी में।
And today is the death anniversary of Isaac Hayes, an American singer, songwriter, composer, and an actor. In 2002, Hayes was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame, and he has acted in multiple films and TV such as Truck Turner, Escape from New York, I'm Gonna Sit You, and many more. So we have a song by him. Let's hear that, titled Joy.
What a way to start each day.
और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।